نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی بہت ہی رحمت کے ساتھ آج ہم ایک نئی بک شروع کریں گے اور یہ کتاب اصل میں ایک عربک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب کو دیکھ لیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھ لیں. کتاب کا اردو نام ہے گناہوں کے برے اثرات. آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں یہ گھریلو ٹوٹ کے
یہ بھی مسئلہ حل کر لیں گے انشاءاللہ.
چلیے اللہ کرے. چلیے جی تیار ہیں آپ سب جی. کتاب کا اردو نام ہے گناہوں کے برے اثرات. اردو ترجمہ ہے. اصل میں جو کتاب تھی اگر آپ بک پہ سے میرے ساتھ بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہم جب عربی کو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ اردو میں پڑھنے لگتے ہیں. اصل جو کتاب تھی وہ کیا تھی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے؟ الذنوب و اثرہ السیئ. ذنوب ذم کی جمع اور اثر کہتے ہیں اثرات کو. صحیح میں نے برے تو اردو ترجمہ کیا ہوا؟ گناہوں کے برے اثرات. یہ کتاب بنیادی طور پہ بہت ہی معروف عالم علامہ الامام الحافظ عبد الرحمن اور معروف نام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی. ان کے نام کے ساتھ یہ کتاب آ جاتی ہے ذہن میں, تلبیس ابلیس. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جس میں انہوں نے شیطان کے ٹریکس اور وہ کس طرح کام کرتا ہے, ہمیں کیسے بہکاتا ہے, اس کا ذکر کیا. تو اسی نام سے آپ ان کو دیکھیے اور آج انشاءاللہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے. اس کا جو اردو ترجمہ ہمارے پاس ہے یہ مولانا محمد انس چترالی صاحب نے کیا ہے. کتاب مختلف پبلیکیشنز کی ہے, آپ کے ہاتھوں میں جو یہ دارالعلوم کی ہے, لیکن جو ساتھی اس وقت باہر سے سن رہے ہیں یا سننا چاہیں تو اس کا پی ڈی ایف بھی موجود ہے. آپ اسی نام کے ساتھ گوگل پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پی ڈی ایف ملے گا, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر ایک بک کا پڑھنا ایک انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں جو علم اور دین بھی پھیلا اور پھیلایا گیا ہے وہ عموماً قیل و قال ہے. اس نے کہا, تم نے کہا, کس نے کہا یہ نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں وہ کون ہے. جب آپ کتاب کھول کر کسی موضوع کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اسے شرح صدر بہت ہوتا ہے اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات میں نے سنی نہیں بلکہ پڑھی ہے. اچھا خود سے بک پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, وہ پڑھی ہوگی, لیکن اس وقت جو آپ کریں گے سیکھیں گے. جو چیز کتاب اور استاد کی موجودگی میں کسی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ لی جاتی ہے وہ پتھر پہ لکیر کی طرح گھڑ جاتی ہے. آپ اس کا فرق محسوس کریں گے. یہاں بیٹھ کر ہم جتنا حصہ پڑھا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ گھر میں کوئی بھی کتاب پڑھ لیں اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب میرے آپ کے لیے کائنہ بھی ہے. آج کا دور اگر کوئی بھی دیکھے تو ہر بندہ ہی شکوہ کرتا دکھتا ہے, گلے بھی ہیں, پریشانی ہے, کیا مصیبتوں نے راستہ پکڑ لیا. کسی کو بچوں کی تکلیف, کسی کو جان کی, کسی مال کی, کسی کچھ کہیں کچھ. یعنی جب ہم چاروں طرف مشکلات میں, کہیں معاشی, کبھی معاشرتی اور کبھی قومی, کہیں سیاسی, کبھی مذہبی مسائل دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے, کیا اللہ نہیں ہے, کیا اللہ ہے تو پھر وہ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے. یعنی بہت سارے سوال ہیں. یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, بلکہ بعض نافرمان قسم کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ہے تو پھر دنیا میں اتنے غم کیوں ہیں, اتنے دکھ کیوں ہیں, اتنی تکلیفیں کیوں ہیں. تو لہٰذا یہ کتاب آپ کو مجھے جس سوال کا جواب دے گی وہ کیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورت شورا کی آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا پتہ چلا آج تک میرے اوپر اگر مالی پریشانی آئی, کوئی بدامنی ہے ہمارے ملک میں, اگر انفرادی طور پہ میں پریشان ہوں یا اجتماعی طور پہ ہم سبھی پریشان ہیں, تو اس کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات سے غفلت اور اس عظیم خالق مالک رزاق وہ رب جس کا دیا کھاتے ہیں, جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا, ہم उसकी मोहब्बतों से बेनियाज होकर उसकी नाफरमानियाँ करते हैं। तो याद रखिए, जब इंसान अल्लाह के कवानीन को पसे पुश डाल देते हैं तो फिर अल्लाह ताला का ये कानून हरकत में आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मुल्क में भी आम तौर पे हुकूमत हमेशा मददगार होती है, वो लोगों की फलाह व बहबूद की कोशिश करती है, लेकिन जब एक शख्स बार बार कानून तोड़ता है तो आखिर फिर उसको जेल में डाल देती है। अभी आप तफसीर में भी यही सुन रहे थे कि जेल क्या है, जहन्नुम क्या है, एक जेल खाना। जो सरकशियाँ करते हैं उनको पकड़कर लोग जेल में डाल देते हैं, तो अल्लाह भी उन सरकशियों को पकड़कर आखरत में तो जहन्नुम में डालेगा, जो एक जेल है। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह सुबहाना ताला का एक असूल है, याद रखिए, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। लिख लें ये बात, दिल की तख्तियों पर लिख लें, बस जो मुसीबत तुमको पहुँचती है वो अल्लाह, सॉरी, हम सभी फ़ोन बंद कर सकते हैं, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। एक असूल याद लिख कर ले, जो भलाई तुमको पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। क्या पता चला कि मेरे आप में से कोई इतना नेक नहीं है कि अपनी नेकियों की वजह से दुनिया में जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे, ओढ़ रहे हैं, ये हमें मिलता। ये जो मिला ये उसकी अता है, ये उसकी अनायत है। और दूसरा असूल भी लिख लीजिए, वमा असाबक मिन सैयतिन फमिन नफसिक। और जो तकलीफ मुसीबत तुमको पहुंचती है, जो भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है, वो तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से होती है। मानिए, यही कानून है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन में। हम आयत करीमे के नाम पे 1,25,000 बार इसको पढ़ते, पढ़वाते, याद करते, कराते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा इसके मानी पे गौर करें तो वो यही बात है कि वमा असाबक मिन सैयतिन फमिन नफसिक। और बंदा आयत करीमे में क्या कहता है, इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे पता है ये मुसीबत मेरे ही किसी गुनाह की वजह से आई है। तो लिहाजा अगर आज कहीं कहत हो, अफरा तफरी हो, बदअमनी हो, खौफ हो, हिरास हो, तो ये सारी परेशानियाँ हमारे अपने नफ्सों की पैदावार हैं। और सूरत रोम आयत 41 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, आयत का नंबर नोट किया करें, बाद में जाके खोल लें प्यार से कुरान को, उस आयत को लिखिए, उसका तर्जमा पढ़िए, अगर खुद आता है तो खुश हों, और फिर कहें कि वाकई यार रब, तेरे कलाम को तर्जमे से पढ़ने के बाद अब हमें समझ आने लग गया है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है। आयत क्या है, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, फैल गया खुश्की और तरी में फसाद। फसाद क्या, डिसऑर्डर, जैसे आपकी सारी चीज़ें घर की टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, वो बाहर की चीज़ें अंदर, अंदर की चीज़ें बाहर, यानी डिसऑर्गनाइजेशन हो गई खुश्की में भी और तरी में भी। क्यों, बीमा कसबत ऐ दिन नास, उस कमाई की वजह से जो लोगों ने की, यानी लोगों के बुरे करतूतों की वजह से खुश्की और तरी में फसाद फैल गया। क्यों, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह इन्हें इनके बाज़ अमाल का मज़ा चखाए और ताकि वो बाज़ भी आ जाए। दो बातें पता चली शायद से, जब भी कोई मुसीबत आती है, एक तो उसकी वजह क्या है कि अल्लाह बंदे को वापस बुलाता है, आओ, और दूसरा उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जैसे बच्चा बहुत ही ज़िद करे तो माँ उसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद कर देती है, तो उसको कहती है तुम्हें याद आया कि माँ की बात ना मानने का क्या नतीजा निकलता है। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि इंसान गुनाह शौक़ से करे, अगर वो उसकी दुनियावी और फिर बाद में उखरवी सज़ा भुगतने को तैयार है। मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। देखिए, आपको शुगर बड़ी अच्छी लगती है, आपको केक बड़ा अच्छा लगता है, आपको ऑयली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, खाइए शौक से। अगर बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने हैं, कोलेस्ट्रॉल भारी हो है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं, ऑयली चीज़ें रोज़ खाइए। किसका दिल नहीं करता कि रोज़ फ्राई मुर्गी, चिकन, दाल, साग खूब भून भून के घी डाल के खाए, क्यों नहीं खाते, या एहतियात क्यों करते हैं? हम वेट वॉचर होते हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, किसी का नहीं दिल करता घंटों चले, क्यों चलते हैं, कि जिस्म नरम सही रहे, वॉक करते हैं। तो याद रखिए, जिस तरह एक चीनी की चम्मच जो हम खाते हैं वो भी हमारी कमर के इर्द गिर्द कुछ दिन तो रहेगी, और उससे जो मोटापा या चिकनाई और जो चर्बी होगी वो हमारे साथ शायद हमेशा के लिए रहे। इसी तरह हर गुना बंदे के साथ चिपकता है, सीधी सी बात है। अगर इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद या उसके शुरू में आपको ये बात समझ आ गई, तो मैं कह सकती हूँ कि आज आपने अपने लिए आने वाली ज़िंदगी को आसान करने का नुस्खा समझ लिया। चीखें निकल रही हैं आज लोगों की दुखों से, ऐसी बीमारियाँ कभी सुनी नहीं, ऐसे मसले कभी सुने नहीं, ऐसी फटीक पड़ती है, ऐसी माली धचके पड़ते हैं, ऐसे ऐसे बंदे के ऊपर हमले हो रहे हैं, यकीन ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो उसकी वजह क्या है? हमारे गुनाह। किसी बुजुर्ग ने कहा, तुम जब भी गुनाह कर तक सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, जब क्लासरूम में आए ना, हमेशा अपना फोन साइलेंट पे करके, आप तो साथ लाए ही ना, स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ना लाया करें, छोड़ दें भाई, रिसेप्शन पे छोड़ दें, यकीन करें वो दिन सबसे पुरसकून होता है जिस दिन फ़ोन कर रहा जाए। कोई हम में से इतना अहम नहीं है कि उसका फ़ोन अटेंड ना हो गया तो कोई जंग लग जाएगी या कोई डिसीजन रुक जाएगा। छोड़ें थोड़ी देर के लिए, हनीफ और फोकस्ड हों, फिर देखें कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं। किसी बुजुर्ग का कॉल किया, कहते हैं कि तुम जब भी गुनाह का इर्तकाब करते हो तो अल्लाह उसके लिए सज़ा पैदा करते हैं, मगर अल्लाह हमारे गुनाहों की कलील मकदार की सज़ा की एक झलक दिखाते हैं, वरना अगर तमाम गुनाहों की पादाश में सज़ा देने लगें तो ज़मीन पर इंसान तो कुजा, एक कीड़ा भी बाकी ना रहे। बात सच है। अल्लाह, बाज़ रिवायत में आता है चींटियों की वजह से अल्लाह हमें रिस्क दे रहा है, परिंदों की वजह से अल्लाह ताला दुनिया में खुशियाँ ला रहा है, वजह यह है कि ये मासूम जानवर है। तो लिहाजा हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इस पूरी किताब के अंदर ये सब कुछ, ये क्या है, और आप देखेंगे कि ये ऐसी खूबसूरत किताब है। लेकिन अच्छी किताब कौन लिखता है? जिसकी सोच अच्छी हो, और अच्छी सोच वाला भी हर बंदा नहीं लिख सकता, जिसके पास इल्म भी हो और इल्मी पुख्तगी भी हो। जैसे आप देखिए, गुलकार अपनी गुलकारी से पहचाना जाता है, अदाकार अपनी अदाकारी से, खिलाड़ी अपने खिलाड़ी खिलाड़पन से। जब कोई मुसन्निफ या राइटर कुछ लिखता है तो उसके पीछे एक शख्सियत होती है। आप कह लीजिए कि इल्म किताबों में नहीं होता, उस्ताद की शख्सियत में होता है, इंसान के अपने किरदार में होता है। तो हक बनता है कि किताब पढ़ने से पहले हम साहिब किताब को पढ़ें। किस कौन आप में से ही अल्लामा इब्ने जोज़ी के बारे में कुछ भी जानता है? नहीं जानते। हालांकि आप माशाल्लाह आधे लोग तो स्टूडेंट हैं, और बाहर वाले भी माशाल्लाह, कोई रिवर्ड तो है नहीं हम में से। तो ज़रूरत है इस बात की कि जब सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कहते हैं ना सूरत फातिहा में, कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन्होंने, जिन पर तेरे इनाम हुए, तो हम भी इन लोगों के बारे में पढ़ें कि जिन्होंने वाकई दीन दुनिया की खिदमतें की दुनिया में। तो आज हम इंशाल्लाह इस किताब के हल्के से इंट्रो के बाद अब बात करेंगे अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह के बारे में। आप कह लीजिए कि आलिम भी हैं, जाहिद भी हैं और आबिद भी हैं। आप चाहें जिनके हाथों में बुक है तो किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 12 पे इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, साथ साथ कागज़ कलम के साथ आप अपने जो साइड नोट्स अगर कोई जिक्र होंगे तो वो लिखते जाएं, लेकिन जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा उठाते हैं। कौन थे इनका इस्मे गरामी, नाम क्या है? अब देखिए ज़रा इनके नाम को, आप नीचे अंडरलाइन करके देखिएगा, अल हाफिज़ जमालुद्दीन अबुल फराज अब्दुर्रहमान बिन अल जोज़ी अल करशी अल बगदादी है। इतना लंबा नाम है। इसमें इनका अपना नाम भी, इनके बाप का नाम भी, इनके दादा का भी नाम है, इनके परदादा और करशी कुरैश से, करशी कबीला और बगदाद के रहने वाले थे। आप बेशुमार कीमती और नाफे मुअल्लिफात के मुअल्लिफ हैं। मुअल्लिफात क्या होती है? कंपाइल्ड मुख्तलिफ चीज़ों को, हदीसों को जमा करके एक जगह कर देना। वाज़ो नसीहत की तासीर में कामिल दस्तरस रखते हैं, यानी सिर्फ लिखते ही नहीं थे, बोलने में एक अच्छे स्पीकर भी थे, वाज करते थे, नसीहत करते थे। आपके इल्मी मर्तबे को पहचानने के लिए हाफिज इब्ने रजब अल हम्बली का ये कॉल, जिसको उन्होंने ज़ैले तबक़ातुल हनाबिला में ज़िक्र फरमाया, काफ़ी है। कॉल ये है, यानी इनका, इनको एक कह लीजिए कि रिगार्ड दिया जा रहा है इनकी तारीफ़ में। एक दूसरे आलिम क्या कहते हैं? कहते हैं कि दुनिया में कोई फ़न ऐसा नहीं जिसमें आपकी तसनीफ़ ना हो। लम यत्रुक फना मिनल फ़नूनी इल्ला वलहू फीही मुसन्नफ़। यानी जितनी भी किताबें या जो भी इल्म की बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस, कोई कोटेशन, कोई ना कोई बात इब्ने जोज़ी की है। किस किस को शौक़ आ रहा है इनके बारे में जानने का? और इस शौक़ से भी सुनिए कि ये वो शख्सियात थी जिनसे आज हम तो गाफिल हैं ही, हमारी नस्लें तो इनके नाम भी नहीं जानती होंगी, इल्ला माशाल्लाह। इसके बरक्स किसी सियासतदान का नाम लीजिए, फिर अपने घर के मर्दों से ज़रा उसका बायोडाटा तो पूछिए, वो तो उसके बारे में आपको वो भी सुना देंगे जो शायद उनमें है ही नहीं, वो तो उनके अंदर बाहर को खोल देंगे। क्रिकेटर्स की बातें कर लीजिए, अदाकारों गुलकारों की, और इसी तरह से दुनिया में जो लोग भी मारूफ होते हैं, लोग तो एक एक सितारे के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन असल ये सितारे अभी आपको अंदाज़ा होगा। मैं कोशिश करूंगी बहुत डिटेल में ना जाऊं, इस एक नशिस्त में इनके हालात ज़िंदगी को हम पढ़ें, और हर जुमले के साथ आपने तकाबुल करना है। किससे? अल्लामा इब्ने जौज़ी से। और ये शख्सियत जब इनका एक ओवरव्यू हमारे सामने आएगा तो हमें अपनी बाकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के काबिल करेगी। देखिए असल तो ज़िंदगियां साहब असल ज़िंदगियां तो अम्बिया कराम की थी, कसस रसुल कसस नबी जिन, उसके बाद सबसे बढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबा कराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर मुहद्दसीन, फिर आइमा कराम। वो वहाँ तक तो भी हम पहुँचे ही नहीं, ये तो उनके बाद की एक शख्सियत है। तो आप देखेंगे इसके बाद कि वो क्या दौर था कि जो इस्लाम दुनिया में फैला गया और पूरी दुनिया को इस्लाम के तोहफे दे गया। आइए पढ़ते हैं हज़रत इमाम इब्ने जौज़ी के हालात ज़िंदगी। इनका नसब, नाम और नसब यानी लीनियज, ये क्यों अहम होता है? बहुत अहम होता था। याद रखिए मैं ये बात कहते हुए दर्द महसूस करती हूँ, वो मुआशरे जिसमें पैदा होने वाले बच्चे के असल बाप का भी नहीं पता, असल बाप का भी नहीं पता, वहाँ लीनियज कहाँ चलेगा, वहाँ नसबनामा कहाँ चलेगा? ये बात साइड का नोट है, लेकिन नोट करें, इस्लाम जिना के इसलिए खिलाफ है, इस्लाम एडल्ट्री के और बेहयाई के और बदकरदारी के इसलिए खिलाफ है कि वो बच्चे का नसब बचाना चाहता है। अब इनकी नस्ल में इतनों का पता चल रहा है, अभी आप देखेंगे कि अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से थे। आज का जो बच्चा इस तरह के गुनाह से पैदा होता है उसका नसब किधर है? कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि हम उस मुआशरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि जहाँ जब फादर डे आता है तो एक बंदा खड़ा करके डीएनए टेस्ट करवाया जाता है कि कौन शख्स मेरा बाप है, ताकि मैं उसको फादर डे का कार्ड दूं, क्योंकि माँ को भी नहीं पता। अब ये हो रहा है इस दुनिया में, आप और मैं कहाँ खोए हुए हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं और घूम रहे हैं। अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। तो आइए ज़रा इनका नसब देखिए, बल्कि अगर मैं ऊपर से चलूँ ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपको पहले लोगों के नामों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होगी, तो मैं ऊपर से पढ़ती हूँ। देखिए अबू बकर सिद्दीक, ठीक है, फिर उनके बेटे कासिम, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, फिर बिन नज़र, फिर अब्दुल्ला, फिर मोहम्मद बिन जाफिर, फिर अब्दुल्ला, फिर उबैदुल्ला, अब्दुलरहमान, जमालुद्दीन। यानी ऊपर से देखें तो हज़रत अबू बकर के साथ तकरीबन सातवीं आठवीं सीढ़ी में इनका नसब जुड़ता है। अब सीधा भी पढ़ देती हूँ। नाम था इनका जमालुद्दीन, अबुल फरज, अब्दुलरहमान बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन हमादी बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन जाफर बिन अब्दुल्ला बिन कासिम बिन नज़र बिन अल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन कासिम बिन अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। एक नाम तो इसमें आपको भी दिखा होगा, मोहम्मद बिन कासिम। बहरहाल मसलकन हम्बली थे, यानी जिस दौर में ये पैदा हुए, जिस इलाके में थे, तो वहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल की तालीमात से मुतासिर थे। इल्काबात क्या है, लकब क्या होता है, हम क्या लकब देते हैं, समझते ही हैं ना, जो चीज़ बंदा बहुत करता है। इनके लकब जिससे लोग इनको अमूमन पुकारते थे, अल हाफिज, अच्छा लकब है, अल्लाह हमारी औलादों को भी ये लकब दिलवा दे और हमें सबसे पहले। फिर अल मुफस्सिर, कुरान की तफसीर करने वाले, अल वाइस, वाज करने वाले, अल मुअर्रिखुल अदीब, तारीख लिखने वाले। आप इब्ने जोजी से मारूफ हुए, दुआ करें आप ज़रा। फिर वही बात है ना, हम तो अपना शोर बेदार करने के लिए बड़े, हमारे और हमारी नस्लों के क्या लकब होंगे आज? लोग अमूमन आपको आपकी उस चीज़ से पुकारते हैं जो आप आमतौर पर करते हैं, तो आप खुद देखें कि हम किस तरफ हैं और हमें किस तरफ जाना है इंशाल्लाह। अब दिल में एक शौक़ पैदा हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, आपके भी होगा, कि ये किस दौर की शख्सियत है, नबी सल्लम से इनका दौर कितना दूर का था। तो पढ़ लीजिए, विलादत इमाम अब इब्ने जौजी बगदाद में दर्ब हबीब नामी बस्ती में पैदा हुए। इनकी तारीख पैदाइश में इख्तलाफ है, बाज़ ने 508 हिजरी 508 हिजरा और बाज़ ने 509 हिजरी कहा है, और बास ने 510 कभी कॉल किया, मगर राजेश यह है कि आपकी पैदाइश 510 हिजरी के बाद है, क्योंकि आपने अपने किसी वास में फरमाया कि उन्होंने 528 528 हिजरा में तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में कदम रख दिया, और इस वक्त मेरी उम्र 17 साल की थी। सोचिए नबी सल्लम से कितने बाद की शख्सियत है, 500 साल, क्योंकि हिजरा 10 से शुरू हुआ ना, तो 510 में ये पैदा हुए, तो नबी सल्लम दुनिया से गए 10 हिजरी में, तो पूरे 500 साल की बाद की शख्सियत है। और आज इनकी हालात सुनने के बाद ख्वाहिश भी रखिएगा, कोशिश भी करें, दुआ भी करें कि हम इसके ऊपर के दौर की शख्सियात को भी पढ़ें। उसी में फिर मुहद्दिसीन और आइमाए कराम और बड़े बड़े सहाबा गुजरते हैं, और इन लोगों के हालात पढ़ने और सुनने से इंशाल्लाह हमें अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होगी। इंसान की फितरत है, जैसे लोगों में रहता है वैसा हो जाता है, ढीलों में रहेगा ढीला आ जाएगा, एक्टिव में रहेगा एक्टिव हो जाएगा, सोने वालों में रहेगा उसको नींद आ जाएगी, काम करने वालों में बैठेगा उसको काम करने को दिल करेगा, और खाते पीते रहते हैं तो हर वक्त खाने पीने में तवज्जो रहेगी। अल्लाह ताला हमें इन लोगों के नक्शे कदम पर चला दे। और यहाँ एक और बात आपने नोट की, 17 साल की उम्र में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, यानी तसनीफ़ मीन राइटर बन गए, तो ज़ाहिर के पढ़ लिख चुके थे ना। 17 साल का बच्चा आज हमारा क्या करता है, शायद फरमाइशें करता है मामा से कि अब मामा मुझे वो भी गैजेट चाहिए तो वो भी चाहिए, इल्ला माशाल्लाह। सारों सारे एक जैसे नहीं होते, और हर बच्चे की हर बात बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी। ये जो मैं कहती हूँ ना आजकल, तो वो एक गालिब गुमान के मुताबिक है कि जो दुनिया में रंग है, आप में से किसी का भी बच्चा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। खैर, कहते हैं कि मेरी वालदा फरमाती थी कि वालिद के इंतकाल के वक्त तुम्हारी उम्र 3 साल थी, इस एतबार से आपकी पैदाइश 10 हिजरा बनती है। यहाँ एक बात नोट करें, बड़ी दिल सोजी की बात है, बड़ी दिल सोजी की बात है, और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और वो क्या है कि अक्सर ख्वातीन जब खुद दीन पे आती हैं या दीन का शौक लग जाता है ना, तो वो क्या कहती हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, इनके वालिद को तो कोई दिलचस्पी नहीं है, बाप तो कमाते हैं, बाप तो ऐसे हैं, समझ रह रही है। यानी अक्सर सिस्टर्स का ये गुमान है कि हमारे बच्चों के बिगाड़ में बाप का बड़ा हाथ है, लेकिन यहाँ इनकी बात भी पढ़ लें और ज़िंदगी रहे तो आप कभी पढ़ें नहीं तो सुने, पहले से भी किया हुआ इमाम बुखारी, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं उनकी माँ ने उनको पाला, उनमें से अक्सर के तो बाप ही नहीं थे। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे प्यारे नबी हैं। बच्चे की तरबियत में माँ का बहुत हाथ है। हाँ, अच्छा बाप चूज़ किया हुआ है तो बाप भी साथ देगा। शादी जिस मर्ज़ से की थी वही तो कल आपके बच्चों का बाप बना। आज क्यों कहते हैं कि बुरा बाप है, कल आपका मियार एक शौहर होने के नाते क्या मुनासिब था। बात समझ रहे हैं, जिस वक़्त शादियां करते हैं ना हम अपने बेटों और बेटियों की, उस वक़्त सोचें कि ये मर्द कल बाप बनेगा मेरी बेटी के बच्चे का, और ये औरत जिसको मैं ला रही हूँ कल माँ बनेगी मेरे बेटे के बच्चों की, तो फिर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा इंतखाब हो सकता है और खैर आएगी। बहरहाल, आपके ख़ानदान वाले पीतल का काम करते थे, कॉपर, और आपको तो पहले दौर में पीतल की देगें पतीलियाँ बर्तन बनते थे। यही वजह है कि आपके नाम के साथ असफ़ार भी लगा दिया जाता है, और असफ़ार पीतल फरोश को कहते हैं। ठीक है, एक नई चीज़ पता चल गई आपको, जैसे लोहार है ना, लोहे का काम करने वाला, तो सफ़ार, और सफ़ार को अगर याद रखना हो तो सल्फर से भी याद कर सकते हैं। बहरहाल, पीतल से कि पीतल की तरफ है धात है। 3 साल की उम्र में वालिद साहब का साया सर से उठ गया, मगर इनकी बेहतर तरबियत मुतासिर नहीं हुई। इसको नोट करें, वो माएँ संभाल लेती थीं क्योंकि माओं को और कोई काम नहीं थे, उनका सबसे बड़ा गम और हम अपने बच्चों की नेक तरबियत और किरदार साजी थी। आज ये गम है माँ को, बट दुनियावी तालीम पे गालिब है। 1 साल 1.5 साल के बच्चे को बरने आगे, और उसके बाद फिर एक ऐसे समंदर में फेंकते हैं कि फिर होश तब आता है जब बच्चा आपसे के कद से भर चुका होता है। उस दौर में माएँ क्या करती थीं, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने वालिद की जगह एक मुखलिस और शफकत और मेहरबानी करने वाली फूफी इनको अता फरमाई, जिसने आपकी बेहतर तरबियत और तालीम के लिए दिन रात एक कर दिया। फूफी ही इनको अबुल फदल बिन नासिर की खिदमत में ले गई थी, जिनसे ना सिर्फ बेहतरीन तरबियत हासिल की बल्कि हदीस का सिमा भी किया। तो क्या पता चला, फूफी का रोल किरदार। एक औरत देखी इनको एक आलिम के पास ले गई तो इनकी ज़िंदगी बन गई, आप भी अपने खानदान के बच्चों की फिक्र करें, सिर्फ अपने बच्चों की ना फिक्र करें, भाइयों के बच्चों पे भी नजर रखें, बहनों के बच्चों को भी देखें। क्योंकि देखिए, बाज़ दफ़ा बच्चे माँ की नहीं मानते, फूफो की मान लेते हैं, खाला की मान लेते हैं। तो हमेशा इन रिश्तों का असर दिखाएं। रो पड़े फूफो हैं आप तो, मैं नहीं तुम्हें आग में जाने दूंगी, मैं तुम्हें गलत काम नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हारी गलत बात नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारी 4 दिन की खुशी और उसके बाद एक लंबी तकलीफ नहीं देख सकती। हम ये कड़वे जुमले नहीं बोलते, प्यार वाले जुमले हैं। आप कहते नहीं बच्चे की खुशी है, मिसाल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए बात, चूँकि फूफी के आगे मैं भी फूफ हूँ, आप भी फूफियाँ होंगी, आप जानते ही कितना प्यारा रिश्ता होता है। मेरा ख्याल है कि फूफा फूफी अक्सर इंसान तब बन जाता है जब अपने बच्चे भी नहीं होते, शादी भी नहीं हुई होती। ऐसे ही है ना, जब भाई बड़े हैं और उनके बच्चे होने लगे तो वो बच्चे असल में आपका प्यार जो लेते हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल के बाद में ले। अपने बच्चे तो डांट खाते रहते हैं, तो भाइयों बहनों के बच्चे प्यार लेते हैं। अब आप देखिए, आप कहते हैं बच्चे की खुशी, अब मेरे भाई के बच्चे की शादी है और वो शादी में वो कुछ करना चाहता है जो अल्लाह को पसंद नहीं। आप बताइए, क्या मेरे लिए ये कड़ा इम्तिहान नहीं? मैं यहाँ बैठ के कह दूंगी, खबरदार, मुझे अगर शादी पे बुलाया मैं नहीं आऊंगी, मैं पाकिस्तान इसलिए जाऊंगी कि मैं तुम्हारे गुनाह खाऊं, और मैं जहाज में गिर गई अगर मेरा जहाज गिर गया इस गुनाह पे, क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं कि अल्लाह गुनाहों पे पकड़ता है, तो मेरा बेटा मैं तेरी शादी पे नहीं जाऊंगी, तुझे भी नहीं ये करने दूंगी, मुझे तुझसे प्यार है। लड़े भिड़े, प्यार करें, गुस्सा करें, खड़े रहें, बस देखिए कितने भतीजे भांजे ठीक होते हैं। ना जाएंगे आप, शादी हो जाएगी, लेकिन अगली शादी ऐसे नहीं होगी किसी दूसरे की। हम ये जो गलत को गलत कहते हुए भी फिर कहते हैं मजबूरी बड़ी है, तो ये फिर एक झूठ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं इसको मानती। बहरहाल, फूफी का किरदार इसमें था, और अल्लाह हम सबको ऐसी फूफियाँ बना दे। अब यहाँ आप अपनी फूफियों को बुरा ना कहना शुरू हो जाए कि हमारी फूफियाँ क्यों नहीं हमें लेकर कहीं किसी भी आलिम के पास, और सारा कसूर ही आज फूफी का निकल आना है। पहले ही उस पर अम्मा जी ने कई इल्ज़ाम लगाए हुए, अब एक और भी लग जाना है कि ये बच्चों को देख दीन धर्म जगहों पर नहीं ले गई। तो बहरहाल, और यहाँ ये भी नोट करें कि पहले दौर में दूसरे के बच्चे पे भी हक होता था, आज तो अपने पे शायद कम होता है। जी, आप कुछ कह रहे
आज
हैं?
मेरी भाभी और मेरी भतीजियां भी दो बैठी हैं
माशाल्लाह, तो फिर
महफिल
आपने अपने फूफी होने का एहसास दिला दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, वालिद साहब के इंतकाल के बावजूद तलब इल्म की तरफ मुकम्मल तवज्जो की एक बड़ी वजह माली फरावानी भी थी, क्योंकि इनके वालिद साहिब सरवत थे, बहुत सारा माल तरके में छोड़ा था। हजरत इमाम साहब अक्सर अपनी तसनीफात में इसका तذکرہ करते हैं। चले, यहाँ एक और दलील मिल गई। हम कहते हैं पढ़ना लिखना, और ऐसा पढ़ना कि जिसमें फिर इल्मी बुनियाद बने, जिसमें इल्म ही की तरफ ज़्यादा सफ़र हो, वो गरीबों का काम है। आप देखिए, बाप दौलतमंद है तो पहली बात है कि नेक शख्स के पास दौलत हो सकती है, उसके पास जेवर भी हो सकता है, उसके पास सोना भी हो सकता है, उसके पास 20 लाख की गाड़ी भी हो सकती है। ये चीज़ें नहीं हो, ये चीज़ को अपनी जगह बुरी नहीं, लेकिन यहाँ ये भी नोट करें कि दौलत थी लेकिन बच्चा नहीं बिगड़ा। हमारा क्या होता है आज अमूमन, इल्ला माशाल्लाह के बिगाड़ आने लगता है। तो यहाँ ये भी बात नोट करने की है। चुनाचे अपनी तसनीफ सईदुल खातिर में फरमाते हैं, जिसको माली फरावानी हो इसको अपनी गुंजाइश के बकदर अपने नफ्स पर भी खर्च करना चाहिए। मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैंने एक खुशहाल घराने में परवरिश पाई है, एक खुशहाल घराने में परवरिश पाई है। जब मैंने खुराक में कमी की और अच्छी चीज़ें खाने में कमी कर दी, नोट कीजिए, बड़ी अहम बात है, ख़ास तौर पर हमारे इंडो पाक कल्चर के लिए। क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, कहते हैं खुशहाल घराने में परवरिश पाई, जब मैंने खुराक में कमी की और अच्छी चीज़ें खाने में कमी कर दी, तो बीमारी मुझ पर असरअंदाज हुई, मेरे बहुत सारे मामूलात में खलल आया, हत्ता के बहुत सारी इबादात में इनकता आया। मैं रोज़ाना 5 पारे कुरान करीम के तिलावत करता था, एक दिन जब खुराक में कमी कर दी तो इस मामूल को पूरा ना कर सका, यानी ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही। मैंने कहा, एक लुक्मे की कमी की वजह से कुरान पढ़ने में खलल वाक़ हुआ है, जिसके हर हर हरफ पर 10 10 नेकियां मिलती हैं, तो एक लुक्मा अजीम इतात व सवाब का सबब है। अलबत्ता खुराक वो इस्तेमाल करते जो बदन के मुवाफिक हो, जंक फूड नहीं खाते, फ्रोज़न फूड नहीं खाते, और गला सड़ा पुराना, कितने महीनों पुराना गोश्त नहीं खाते। बात समझ रहे आपको, इतनी बात से समझ आ गई ये बात। खाना भी इबादत है, कौन सा खाना, जो हेल्दी हो, जिसके बाद नमाज पढ़े। आप कहते हैं रोज़ा रख के बैठ जाएं, अब काम कोई नहीं करना, रोज़ा है बात समझ रहे, यानी इंसान क्या कहता है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, ये भी इस्लाम है, ये अल्लाह का हुक्म मानते हैं, अब खाते हैं, लेकिन असल बात है कि हेल्दी खाना है, हलाल खाना है, और इतना नहीं खाना कि फिर ज़्यादा खा के तो बंदा बिल्कुल ही ओवरडोज हो जाए। और इनका ये इस्तदलाल कितना खूबसूरत है कि मैंने एक लकमा कम किया तो मेरा कुरान पढ़ने का एक लफ्ज़ रुक गया, और एक रुका तो 10 नेकियाँ कम हो गई। तो क्या पता चला कि खाइए, क्या सोच के, इबादत करनी है, ये मतलब है इसमें। नामवाफिक गज़ा से सेहत ख़राब भी होती है, और अपने बदन के मवाफिक गज़ा इस्तेमाल करना अक्लमंदी की दलील है। यानी बाज़ लोगों को गर्म चीज़ सूट करती है, बाज़ को ठंडी तासीर वाली, तो जो आपके जिस्म को सूट करे वही करना चाहिए। इब्ने जौज़ी जब सने शऊर को पहुँचे तो इल्म की खातिर बड़ी बड़ी मुश्किलात भी बर्दाश्त की, और हर मुश्किल को न सिर्फ खंदा पेशानी यानी खुशी से स्माइली फेस के साथ कबूल किया, बल्कि ख़ुद अपने बारे में फरमाते हैं, तालिब इल्मी के ज़माने में बड़े शदायद बर्दाश्त किए। शदायद क्या है? शिद्दत से शदीद, यानी मुसीबतें मुश्किलात जो हसूले मकसूद में शहद से भी ज़्यादा शीरी मालूम होते थे। ज़रा सा इन जुमलों को आप दोबारा पढ़ें, मुझे नहीं लगता आपने इसको जज्ब किया, फिर पढ़ें। तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त की। आपको मुझे क्या मुसीबत पड़ती है, सुबह उठना और आरामदेह गाड़ी में बैठना और इधर आरामदेह माहौल में बैठ आना, नरम गाड़ियों पे बैठ के सफ़र करना हमें मुश्किल लगता है ना? कभी भी दीन के रास्ते में कोई भी चीज़ आई हो मुश्किल, कोई पैसा लगता है, वक्त लगता है, बुक खरीदनी पड़ती है, गाड़ी का पेट्रोल लगता है, कुछ भी लगता है, कहते हैं कि ये जो दीन के रास्ते में मुसीबतें मुझे आती हैं ना, ये शहद से भी मीठी लगती हैं, क्योंकि मकसद इसी से हासिल होता है। बचपन के ज़माने में सूखी रोटी लेता और तलबे इल्म के लिए निकल जाता, और भूख लगने की सूरत में नहरे ईसा के किनारे बैठ जाता, पानी के बगैर रोटी खाई नहीं जाती, हर लुकमे के साथ पानी पीता, मगर इसमें मुझे मज़ा आता, मेरी हिम्मत में कमी ना होती, कमी ना आती, जिसका पहले रूखी सूखी खाकर इल्म सीखा। और याद रखे, बहुत भरे हुए पेट के साथ इल्म नहीं आता, हमारे पेट ही तो भर गए इसलिए इल्म की तलब ही नहीं रही। इंशाल्लाह जब बुक शुरू होगी तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे इसी किताब की ज़रूरत थी जो मुझे मोटिवेट कर दे। खैर, इब्ने जौज़ी बचपन से मुत्तकी, परहेजगार और दुनिया से बेरग़बत थे। वक्त के ज़ाया होने के खौफ से लोगों के साथ इख्तलात यानी ज़्यादा मिलना जुलना, सोशलाइजिंग ना करते या ना रखते, इससे इनकी रूह, नफ्स और वक्त सब महफूज हो गए। इमाम इब्ने कसीर इनके हालात में लिखते हैं कि वो बचपन ही से दीनदार और अपने नफ्स की हिफाजत करने वाले थे, न किसी से मेल जोल करते, ना मुशतबे खाना तनावुल करते। मुशतबे क्या होता है? जिसमें शक हो कि पता नहीं सोर्स ऑफ इनकम ठीक था कि नहीं, हलाल है हराम है, इसके दो ही तरह से होता है ना, एक इंग्रेडिएंट वाइज कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, और दूसरी जिस पैसे से ख़रीदा गया उसमें कोई आलाइश ना हो। सिर्फ जुमे की नमाज के लिए अपने घर से निकलते और बच्चों के साथ खेलना भी पसंद ना करते। यानी बहुत ज़्यादा घुटे हुई सोच आ रही होगी आपके जहन में, लेकिन आप अगला टॉपिक पढ़ें फिर मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगी। इनके किरदार के मुख्तलिफ रंग देखते हैं। नंबर 1, गोशे नशीनी। गोशा नशीनी क्या होता है? एक कोने में बैठ जाना। अपने वक्त को कीमती बनाने के लिए गोशा नशीनी को पसंद फरमाते। खुद सईदुल खातिर में फरमाते हैं कि इल्म के लिए गोशा नशीनी से बढ़कर दुनिया में कोई पाकीज़ा ज़िंदगी नहीं, क्योंकि इल्म बेहतरीन अनीसो जलीस है। अनीस कहते हैं उनसे दोस्त, और जलीस जलसा बैठने वाला, यानी उठने बैठने वाला, जिसको आप कहते हैं कि आपकी वो दोस्त है जो अक्सर ही आप, जिनके साथ आप होती हैं या जो आपके साथ होते हैं, या आप उनके घर होती हैं या वो आपके घर होती हैं, और ना भी हो एक दूसरे के घर तो फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं, ऐसी भी दोस्तियाँ होती हैं ना। तो कहते हैं कि इल्म से अच्छा कोई दोस्ती नहीं है जो आपके साथ उठता है और बैठता है। गोशा नशीनी से इंसान फजूलियात से बच जाता है, गोशा नशीनी से इज्जत पाता है, जिल्लत से बच जाता है। गोशा नशीनी ही की बरकत से कसीर पर ताकत ना रखने की वजह से कलील पर कनात नसीब होती है, जिससे दीन और दुनिया की तकालीफ से महफूज हो जाता है। इसी के सबब शैतान की मक्कारी, हुक्मरानों के जुल्म और अवाम के शर और फसाद से महफूज रहा जा सकता है। लेकिन एक आलिम के लिए गोशा नशीनी बेहतर नहीं, इसलिए कि आलिम अगर जाहिल से जुदाई इख्तियार करेगा, इससे मेलजोल नहीं रखेगा, तो वह इल्म को भूल जाएगा। बात वाजे हुई है? यानी तालिब इल्म गोशा नशीन रहे, ये लिख लें आप अपने लिए। इल्म का सफ़र बहुत सोशलाइजिंग के साथ नहीं होता, और मैं अफसोस के साथ कहूँगी, दिन रात का ये ऑब्ज़रवेशन भी है और मुशाहदे में चीज़ें जो आती हैं वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जो क्लासेस में आते हैं, जो नहीं भी आ रहे आना चाहते हैं, उनके रुकने की बहुत बड़ी वजह सोशलाइजिंग है। मेहमान आ गए, शादी आ गई, दावत पे जाना है, अकीका आ गया, अब सालगिरह आ गई है, अब पाकिस्तान से कोई आ गया है, अब शॉपिंग करनी है, आप उंगलियों पे गिन के देखें, चले इल्म का भी कोई टेस्ट ना भी लगा हो ना, नमाज़ें किधर जाती हैं, लेट क्यों होती हैं, हमारी नमाज़ों का खुशू कब जाता है जब हम बहुत मेहमानों में घिरे होते हैं, ये पसंदीदा नहीं है। तालिब इल्म कोने में बैठे, उसको तो बस अपने इल्म को लेना है, और आलिम जो इल्म ले चुका है वो लोगों में मिले। सीधी सी बात समझ आ गई, इल्म लेने के लिए ज़रा सा अपने आप को बाउंडेड करें। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे फुल टाइम कोर्स की, 2 साल का कोर्स है, 3 का है, 1 का है, 4 का है, उस 1 साल अपने आप को बांध लें, मैंने फालतू नहीं घर से निकलना, मैंने बहुत दावतों में नहीं जाना, सारे जाते हैं जाए। और आप देखिए हमारे बच्चे दुनिया की तालीम के लिए ये गोशनशीनी करते, मेडिकल की स्टूडेंट्स बच्चियाँ क्या हर शादी में जाती हैं, हर दावत में जाते हैं, सारे जा रहे हैं, वो जिससे पढ़ना है, कब इम्तिहान 2 माह बाद है, पढ़ रहे हैं जी, यकीन है ना, हम दीन की तालीम को खेल समझते हैं। छोटी सी बात पे आज भाई ने घर में आना है, मेहमानों ने आना है, बच्चे के दोस्तों ने आना है, मैं छुट्टी करूँगी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने तो टिश्यू पेपर की तरह क्लास को पकड़ा हुआ है, आप कहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते आप। इसके लिए बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है, दूसरों को जैसे बाकी चीज़ों का यकीन दिलाया हुआ है ना। आप जॉब करती हैं तो आपके जॉब के आवर्स में, वीकडेज में कोई आपके घर आता है, सबको पता है, और अगर आपके आए भी हों वो कहेंगे बेटा तू जा काम पे, हम खुद ही नाश्ता कर लेंगे, और आप क्लास में आते हैं और किसी को आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरी क्लास का वक्त है, दैट मीन इसकी वो कदर नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर दे दे। बस मुतसव्विफीन की तरदीद, मुतसव्विफीन कौन होते हैं, जिनका मिजाज सूफ़ी किस्म का होता है, यानी वो ज़्यादा तन्हाई में बैठ के जिक्र अज़कार या चिल्ला कशी को ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर निकलने की निस्बत, तो उन्होंने कुछ रद्द भी किया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुतसव्विफीन पर एक मुस्तकिल फ़सल के तहत बेफ़ायदा गोशा नशीनी पर रद्द करते हुए फरमाते हैं, कितने उलमा लोगों से अदम इख्तलात की वजह से इल्म को भूल गए, यानी आलिम है बंदा और लोगों में नहीं निकलता, घोटा वो कहता नहीं तुम प्यासे हो तो तुम आओ मेरे पास, और वही बात है कुआँ प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएँ के पास जाता है, लेकिन अगर वो आलिम बादल बन जाए और ख़ुद बरसने के लिए निकल जाए, कितनों के ऊपर रहमत हो जाए, तो इल्म वाले को कभी भी कम अकेले में नहीं बैठना चाहिए, हालांकि वो इस इल्म के ज़रिए लोगों की इसलाह कर सकते थे। एक आलिम के लिए गोशा नशीनी बेहतर नहीं है, हाँ शर से बचने की गरज से हो तो अलहदा बात है। बस जाहिल सूफियों की मजम्मत करते हुए फरमाते हैं, अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि शरीयत की हदूद से निकले हुए हैं, गोया मुतसव्विफीन और मुतज़ाहिदीन यानी जुहद इख्तियार करने वाले मुतज़ाहिदीन की बात इनके लिए शरीयत का दर्जा रखती है, हालांकि आजकल मुतसव्विफीन जिस तरीके पर चल रहे हैं, अल्लाह के नबी की सीरत और आपके सहाबा का तरीका इस तरह नहीं है। मुश्किल लफ्ज़ से मतलब इसका यह है कि बाज़ लोग अपने बुज़ुर्गों की बातों को अल्लाह और उसके रसूल की बात से भी आगे ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर और आपका मिजाज क्या था, आप हंसी मजाक भी फरमाया करते थे और अच्छी चीज़ों को पसंद फरमाया करते थे, बाज़ दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की दिलजोई के लिए इनके साथ चलने में मुसाबिका भी फरमाते, ये कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, आप गोश्त भी तनावुल फरमाते, मीठी चीज़ों को पसंद फरमाते और मीठा पानी मंगवा कर नोश करते, आपके सहाबा का भी यही तरीका और तर्ज़ ज़िंदगी था, जबकि मुतसव्विफीन और मुतज़ाहिदीन ने इससे हटकर अपना एक तरीका ईजाद किया, यानी ये अलामा साहब जो हैं ये ऐसे मिजाज वाले लोगों पे तनकीद कर रहे हैं कि हंसना नहीं, बोलना नहीं, चिल्ला काट रहे हैं, किसी से मिलना नहीं, अलग नहीं, अल्लाह के नबी तो एक चलते फिरते इंसान थे, लोगों के साथ घुलते मिलते खाते पीते, आप देखिए अगर ऐसा ना हो बंदा तो फिर दीन तो सिर्फ चंद लोगों के बीच में रह जाएगा और ज़्यादा लोगों में तो नहीं आएगा। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि इल्म देने के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ता है और इल्म लेने के लिए लोगों से कटना पड़ता है, इसको जम बना दें, ये बड़े काम की बात है। चलिए उलमा के दरमियान आपका मुकाम, इंसान हमेशा तब पे उस कॉल हर इंसान अपने हम पेशा लोगों से पहचाना जाता है, मसलन कोई डॉक्टर बड़ा अच्छा है, कोई आम बंदा कह दे ना वो अच्छा डॉक्टर है, जब कोई डॉक्टर कहेगा या डॉक्टरों में से कोई उस्ताद कहेगा ना ये बड़ा अच्छा उस डॉक्टर है, उसकी बात मानी जाएगी। इसी तरह एक आलिम कितने पानी में ये पता चलता है दूसरे उलमा के, उसके बारे में बयान से अल्लाह माफ़ करे, आज तो बन ही ये गया गेट पटक्के का बहर। एक आलिम दूसरे आलिम की तारीफ कर ही नहीं सकता, होती देख नहीं सकता। अल्लाह रहम करे कोई कर दे तो उसको स्कैंडलाइज किया जाए, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन याद रखे कि इल्म वाले का दिल खुला होता है। तो ये पढ़ेंगे आपके पिछले दौर के जो उलमा थी, इवन आइमे कराम, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला, इमाम मालिक, इमाम शाफी, ये एक दूसरे के बारे में बड़े खूबसूरत कमेंट्स देते हैं। आज इनके मुकल्लदीन जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि दिल छोटे हैं, दिल तंग है। घुटन वाले जहन के साथ किसी की तारीफ बंदा कर नहीं सकता। तो आइए पढ़ते हैं कि इनके बारे में दूसरे उलमा क्या कहते हैं। आपके बाद आने वाले बड़े बड़े अजिल्ला, अजिल्ला से मेरा जलील यानी बहुत इज़्ज़त वाले उलमाए कराम आपकी तारीख़ में रुतबुल लिसान है, यानी ज़ुबान उनकी गीली रहती है, भीगी रहती है इनकी तारीफ़ें करने में। चुनाचे इब्ने हल्कान आपके बारे में आपके मुतल्लिक़ फरमाते हैं, इब्ने जौज़ी अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे, हदीस में वक्त के इमाम थे, बहुत सारे फ़नून में बेशुमार किताबें लिखी हैं, अगरचे बास लोग इसमें मुबालगे से भी काम लेते हैं। चुनाचे वो कहते हैं, इनके लिखे हुए रजिस्टरों को जमा करके इनकी उम्र के अय्याम के साथ हिसाब लगाया गया और इनकी कापियों को उम्र के अय्याम पर तकसीम किया गया तो यौमिया 9 रजिस्टर होते थे। किसको समझ आई ये बात? यानी जिन्होंने भी इनके बारे में कहा है कि ये हदीस के इमाम भी थे, अपने वक्त के इमाम थे, और मुबालगे की हद तक ये कह दिए कि इतना लिख गए, इतना लिख गए कि अगर ज़िंदगी के हर दिन पे हिसाब किया जाए तो 9 रजिस्टर रोज़ लिखते थे, यानी 9 कापियाँ भरते थे। अल्लाह वल्लम। इब्ने जौज़ी बहुत ज़्यादा मुतालिया करते, हमेशा पढ़ने का शौक़ और शगफ़ था। ख़ुद अपने ज़माने तालिब इल्मी में शौके मुतालिया की बाबत लिखते हैं, के बारे में लिखते हैं कि सिर्फ़ ज़माने तालिब इल्मी में मैंने 20,000 से ज़ायद किताबों का मुतालिया किया। नोट करते हैं इसको, तालिब इल्मी के दौरान स्टूडेंट लाइफ में 20,000 बुक्स पढ़ी, तो बाद में कितनी पढ़ी होंगी, फिर तो उतनी लिखी, हमने कितनी पढ़ी आज तक? क्या मैं इन इल्म दोस्त हूँ? इसका सवाल खुद से करते हैं। सैदुल खातिर में लिखते हैं कि इल्म कमाल हासिल करने के ख्वाहिशमंद के लिए मुताले कुतुब ही अहम है। ओजे कमाल तक पहुंचना, ओजे कमाल तक यानी बुलंदी तक पहुंचाने का जरिया सिर्फ मुताले। आज क्या है, फेसबुक, कितने लाइक्स, किसने आपको पसंद किया, सब्सक्राइब कर दें, यानी आज मीडिया का सहारा लेता है बंदा ऊपर जाने के लिए। पहले लोग इल्म की सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाते थे। इसके ज़रिए सलाफ के उलूम और इनकी बुलंद हिम्मती का नज़ारा होगा, जिससे दिल बेदार और दिमाग में तेज़ी आएगी और बुलंदी की तरफ सफ़र करने में हिम्मत पैदा होगी। कोई किताब भी फ़ायदे से खाली नहीं, किताबों से बेनियाज उलमा में तुझे कोई बुलंद हिम्मत शख्सियत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी पैरवी की जाए, ना इनमें साहिब तकवा होंगे जिनसे लोगों को फ़ायदा हो। असलाफ को देखने के लिए इनकी सीरतों का मुलाहजा कीजिए, इनकी किताबों का मुताला कीजिए, इससे अपने वक्त के बहुत सारे उलमा से बहुत सारे फ़नून में फोकियत हासिल होगी। इब्ने जौज़ी ने तफसीर, हदीस, तेब, वाज वगैरह में उलूम, यानी वगैरह उलूम में बेशुमार किताबें तसनीफ़ की हैं, जिनसे इन उलूम में इनकी महारत, कमाले महारत वाज़े होती है। इतनी बात सुनकर क्या लग रहा है? क्या ये लोग कामयाब थे? क्या इनकी ज़िंदगी खुशी वाली या खुशकिस्मती वाली ज़िंदगी थी? हम ऐसे लोगों को शायद सोचेंगे बोर हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 500 साल बाद नबी सल्लम के आए, 5 हिजरा, आज कौन सा है? 1439 अब शुरू हुआ है मुहर्रम है, 5 निकाल दीजिए 14 में से, पीछे क्या रह गया? 900 साल से ज़्यादा पुरानी शख्सियत है, और आज मदरसों में और लाइब्रेरियों में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। ये है असल बात। फम ममायन फो नासु फयम कुस वाम ममायन फो नासु फयम कुस, जो लोगों को नफ़ा देगा वो बचेगा। कोई एक किताब हम भी लिख दें जो लोग बाद में पढ़ें, कोई हम भी पढ़ा दें, हम किसी की पढ़ लिखी भी पढ़ा दें, शायद हमारे लिए निजात का जरिया हो। आप अपनी इस किताब जो नेक्स्ट वीक से बकायदा शुरू होगी, अपनी दोस्तों को बुला लें। ठीक है, हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, हम दूसरों को बुला तो सकते हैं। सारा शहर भरा हुआ है, एक कोना ना खाली रहे इस कमरे का, अगर हमें इल्म की कदर आ जाए तो। आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि इस पूरे वीक में अपनी दोस्तों को बुलाएं, और ये किताब आपके हाथों में है, आप ख़ुद देखेंगे जाके कि इसमें कितना कुछ है। शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बहरहाल, इसके बाद इनके बारे में एक और कौल है, बहुत ही खूबसूरत तालिम है, शायद आप इनके नाम से जान वाकिफ़ हो, इमाम ज़हबी। कोई जानता है इनके बारे में कौन थे, क्या करते थे, क्या उनका बात थी? तो बस इससे हमें अपना भी इल्म दोस्त होना इंशाल्लाह पता चलेगा, और हमने अल्लाह ने चाहा तो अब इसके बाद ज़्यादा इल्मी बातें करनी है। ये क्या कहते हैं इब्ने जौज़ी के बारे में, तफसीर वाज़ में माहिर और मज़हब में मुतवस्सत थे, यानी एक्सट्रीम पे नहीं थे। देखिए, किसी भी इल्म वाले का बैलेंस्ड होना, हर मसलक को कबूल करना, हर दीन वाले, हर जमात, हर गिरोह, हर फिरके के साथ अपना ताल्लुक मतवाजन रखना, ये उसकी खूबी होती है। किसी एक तरफ झुककर दूसरे को गलत समझना, ये भी दुरुस्त बात नहीं है। तो बहरहाल क्या कहते हैं कि तफसीर वाज में माहिर और मज़हब में मुतवसत थे, मुतवने हदीस पर मुकम्मल उबूर था, यानी हदीस से बहुत गहरा इनका शौक़ था। अलबत्ता हदीस सही और सकीम पर गुफ्तगू में मुहद्दसीन और हुफाज हदीस की तरह थे। इमाम ज़ाहबी तारीखुल अलकबीर में लिखते हैं, हमारे नज़दीक इब्ने जौज़ी हिफ्स में इतने मारूफ नहीं थे, अलबत्ता मालूमात की कसरत में अपना सानी नहीं रखते थे, यानी नॉलेज बहुत था लेकिन हदीसें ज़ुबानी याद कम थी। आपने एक मदरसा भी बनाया था, इसमें मकतबा यानी लाइब्रेरी भी बनाई, इसमें मकतबा भी बनाया यानी लाइब्रेरी, जिसमें अपनी तमाम किताबें वक्फ कर दीं। इसके बाद भी बगदाद के मुख्तलिफ मदारिस में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। हाफिज़ इब्ने अलबेशी बिन इब्ने जौज़ी के बारे में लिखते हैं, इब्ने जौज़ी बेहतरीन गुफ्तार के मालिक थे। ये भी नोट कीजिए, शख्सियत का हुसन गुफ्तार का खूबसूरत होना, यानी बातचीत में भी तो बंदा मुनासिब लगे, और आला तरीन मुंतज़िम थे। मुंतज़िम कौन होता है? मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। शीरी ज़ुबान थे, मीठी ज़ुबान थी, हाँ आला किस्म के खतीब थे। आपकी उम्र और काम में बड़ी बरकत थी, 40 साल के अरसे तक लोग आपसे 40 साल के अरसे तक लोग आपसे सिमाए हदीस करते रहे। अच्छा जी, उम्र में बरकत कैसे आती है? हम सब सोचें, अपनी अपनी उम्र सोचें, कोई 25, 30, 35, 40, 50, जितने का भी है, अपनी पूरी ज़िंदगी का हासिल क्या है? यानी ये लोग 40 साल तक ये हदीस पढ़ाते रहे और लोग इनसे फ़ायदा लेते रहे, तो बाकी चीज़ें क्या, ये तो भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा। तो बस दुआ करते जाते हैं, अल्लाह हमारी अगली ज़िंदगी को ज़्यादा फ़ायदा मंद बना दे आज की ज़िंदगी से। इनकी किरदार की एक और ख़ूबी बहुत बड़ी थी, और वो क्या थी? हक गोई और खिताबत। कैसे? आइए पढ़िए। खिताबत, आपका जिहाद सिर्फ तसनीफ़ो तालीफ़ और कलम में मुनहसिर नहीं था, यानी सिर्फ लिखते पढ़ते ही नहीं रहते थे, बल्कि आप फ़न वाज़ो खिताबत में भी अपनी मिसाल आप थे। ख़ासो आम सभी में मारूफ और मशहूर थे। हज़रत इमाम बिन कसीर आपके इमाम इब्ने कसीर आपके बारे में कहते हैं, वाज़ो खिताबत के मैदान में इब्ने जौज़ी का कोई मुकाबल नहीं था। फसाहत व बलागत, शीरीन गुफ्तारी, असर अंगेज़ी, अजीबो गरीब नुकात के बयान, सरीउल फहमी। सरीउल फहमी क्या होती है? बहुत जल्दी समझ जाते, फहम बहुत अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग का लेवल तेज़ था, और इदराक में भी बेनज़ीर थे। हक गोई, दीन के मामले में बड़े बड़े लोगों को खातिर में ना लाते थे। ये नोट करें, जहाँ मामला दीन का आ जाए वहाँ हम तो छोटे छोटों से खतर में आ जाते हैं, ये तो बड़े बड़ों को नहीं लाते। मतलब ये कि अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को खुश नहीं करते थे। आपके वाज़ में बड़े बड़े रूसा और खुलफा शरीक होते थे, और दौरान वाज़ एक मरतबा इस गोशे की तरफ रुख किया जहाँ खलीफा अल मुस्तदील अल अब्बास बैठा हुआ था, और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपके मुतालिक कुछ कहता हूँ तो तुझसे डरता हूँ, और अगर खामोश रहूँ तो तेरे बारे में डरता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपको ये कहना कि अल्लाह से डरो, ये कहने से कई गुना बेहतर है कि तुम अहले बैत हो, बख्शे बख्शाए हुए हो। और ये भी फरमाया, हज़रत उमर फरमाया करते थे, मुझे किसी आमिल के बारे में जुल्म करना मालूम हो जाए तो मैं इसको अपनी तरफ मंसूब करूँगा। इमाम इब्ने जौज़ी हक के दिफा में किसी को खातिर में न लाते, बिदात व मुनकरात के ख़िलाफ़ जंग की। इस अजीम काम में कामयाबी के मुतल्लिक यूँ फरमाते, कुछ अकवाम बिदात व मजहबी तासुबात को हवा देने लगी, इनका मैंने ताकुब किया, अल्लाह ने इनके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई, और हमारा पलड़ा ही भारी रहा। क्या सीखा? जुरत पैदा कीजिए, नरमी, आसानी, आवाज़ भी अच्छी, मिलने में अच्छे, खुश गुफ्तार भी, लेकिन हक को बातिल और बातिल को हक नहीं कहना। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और जब कोई बंदा वक्त के माशरे में फैले हुए बातिल पे तनकीद करेगा तो उसका लाजमी नतीजा उस पे आजमाइशें आएंगी। तो आइए पढ़ते हैं कि राह हक में आजमाइश और इब्तला इनकी कैसे हुई। इब्ने जौज़ी आखिरी उम्र में आजमाइश और इब्तला का शिकार हुए कि एक शख्स रुकन अब्दुस्सलाम बिन अब्दुल वहाब बिन अब्दुल कादिर अल जैली के नाम से मारूफ था, जो साहिब तसनीफ था मगर सही अल अकीदा नहीं था। इसके अकीदे में जिंदीका था और इसकी किताबें भी बदअकीदगी से भरी पड़ी थी और गलत अकायद व नज़रियात पर मुश्तमिल थी। वज़ीर इब्ने यूनस अल हम्बली ने इमाम इब्ने जौज़ी की मौजूदगी में इसकी सारी किताबों को जला दिया और इसके मदरसे को इब्ने जौज़ी के हवाले कर दिया। जब मनसब वजारत पर गाली किस्म का हबीसुल बातिन राफ़ी इब्ने कसाब नामी शख्स मुतमक्किन हुआ तो इब्ने यूनस और इसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की तो रुकन अब्दुलसलाम मौके को गनीमत जानकर इब्ने कसाब के पास गया और कहा कि तुम इब्ने यूनस के साथियों की तलाश में हो। इब्ने जौज़ी इसका सबसे बड़ा दोस्त है और अबू बकर की औलाद में से। इब्ने यूनुस ने मेरे दादे का मदरसा मुझसे छीनकर इब्ने जौज़ी को दे दिया और इब्ने जौज़ी ही के मशवरे से मेरे दादा की और मेरी किताबों को जला दिया गया। इब्ने कसीब ने खलीफा अल नासिर को ख़त लिखा और अल नासिर राफजियत की तरफ मेलान रखता था और इब्ने जौज़ी को तकलीफ़ पहुंचाना भी चाहता था। हुक्म नाफिज किया कि इब्ने जौज़ी को रुकन अब्दुस्सलाम के हवाले किया जाए। चुनाचे हुक्म नामा मिलने पर रुकन अब्दुस्सलाम इब्ने जौज़ी के घर गया, इनको गालियाँ दी और हाना तमीज़ यानी डिस्क्रिमिनेशन वाला या बुरा रवैया अख्तियार किया, घर पर कब्ज़ा किया। चुनाचे इब्ने जौज़ी के घर वाले इधर उधर हो गए और इमाम साहब को पकड़ कर बज़रिया कश्ती वास्त लाया गया और वहाँ एक तंगो तारीख घर में तन तनहा कैद किया गया। हत्ता कि अपने लिए खुद खाना पकाते और कपड़े धोने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। इस तरह 5 साल तक वो कैद की हालत में रहे। इस दौरान गुसल तक नहीं करने दिया लेकिन मुश्किलात पर सब्र, बातिल हुक्मरानों के मुकाबले में हक की दावत के लिए सीना सपर होना, उलमा आमिलीन और मुजाहिदीन और मुखलसीन का हमेशा शेवा रहा है। इब्ने जौज़ी ने भी सब्र आजमा मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और हक का बोलबाला किया। इल्म पर अमल के मुतालिक सईदुल खातिर में फरमाते हैं, इल्म पर अमल करना ही असलुल असूल है। बात सच है, जो इल्म लेते हैं उस पर अमल ही तो करना है। देखिए आप ड्राइविंग क्यों सीखते हैं? ताकि ड्राइविंग करें। आप ड्राइविंग ना करें तो खाली टेस्ट दे के लाइसेंस लेने से तो फ़ायदा नहीं होगा। तो कहते हैं जो इल्म लिया जाता है उस पर असल में अमल करना ही बात है। और जो शख्स मुकम्मल और वो शख्स मुकम्मल मिस्कीन है जैसे इल्म के हसूल पर उम्र को ज़ाया कर दे जिस पर अमल ना हो। इससे तो दुनिया की लज्जत भी गई, आखरत के सवाब से भी महरूम रहा, कुव्वत हुज्जत के बावजूद मुफलिस व नादार रहा। क्या पता चला कि ये चीज़ें इंसान को नहीं लानी। आइए एंड पे पढ़ते हैं इनकी वफ़ात कैसे दुनिया से गए। इब्ने जौज़ी दाईयाना यानी दावत देने वाले कॉलर टू अल्लाह ताला मुखलसाना और मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारने के बाद 90 साल की उम्र में जुमे की शब 12 रमज़ान 597 हिजरा को बगदाद में दारुल फ़ानी से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। तो क्या उम्र हुई फिर इनकी टोटल? 10 साल निकाल दीजिए तो 87 ईयर्स की उम्र में दुनिया से गए। मगरिब और इशा के दरमियान इंतकाल हुआ, तहज्जुद के वक्त नहलाए गए, सुबह पूरा अहले बगदाद आपके जनाजे में शरीक हुआ। क्यों? कोई सियासतदान थे? कोई दुनिया में फन एंड फ्रॉलिक के नाम पे मारूफ थे? ये सच्चे लोगों की निशानी है कि उनका हुस्न खात्मा होता है और उनके बाद उनके जनाजे में बहुत लोग होते हैं। तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। सुबह के वक्त लोग जनाजा लेकर चले, कब्र तक पहुँचते पहुँचते जुमे का वक्त हो गया। बाबुल हरप में इमाम अहमद बिन हम्बल के मदफन के करीब मदफून हुए। मौत के वक्त ये अशार आपकी ज़ुबान पर जारी थे। देखिए मौत का वक्त इंसान की असल खोल देता है। अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? या कसीर अलफ़ यमन कसर अज़म बलदई, ए गुनागारों को कसरत से माफ़ करने वाले, जा कल मुस्निबु यरजू असफ़ खान जुर्म यदई, गुनागार तेरे दरबार में अपने गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद के साथ हाजिर है। अना दईफ़ व जज़ा दईफ़ एहसान इलई, मैं तेरा मेहमान हूँ और मेहमान के साथ एहसान का मामला किया जाता है। सारी ज़िंदगी इल्म की खिदमत करके तकवा जोहद और जो कुछ अच्छे अच्छे काम है वो कर करा के दुनिया से जा रहे हैं और रो रहे हैं कि गुनाह बढ़े हैं। आज हम अपने ऊपर लेकर सोचें। सारी ज़िंदगी शायद मनमानियां करते जाएं और मरने के बाद ही अपने नाम के साथ मरहूम और मग़फ़ूर और न जाने क्या क्या लफ्ज़ लगाते हैं। तो याद रखिए, ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो बाद में दूसरों को फ़ायदा दे। इस तरह से अल्लाह का ये एक अच्छा बंदा अल्लाह के पास गया अपने गुनाहों के एहसास के साथ। अल्लाह ताला इन पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हमें इनके इल्म से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। हो सकता है आज इनके बारे में पढ़ते हुए कुछ साथियों को बोरिंग लगे या कि ये क्या, हम तो ये क्या पढ़ें, लेकिन देखिए ये शख्सियात थीं तो फिर ही वो चीज़ें लिखी। अगर आप इस किताब का इंडेक्स खोल लीजिए, पेज बुक का शुरू का, तो दो तीन जुमलों में आपको किताब का तारुफ करवा दूं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आप खोल लीजिए अपनी पेज का बिल्कुल शुरू से इंडेक्स, जहाँ पे आपको पूरी किताब का खुलासा है, ताकि आप ख़ुद भी देखें कि आप क्या पढ़ेंगे। आज तो चूँकि एक पर्सनैलिटी पर बात हुई है ना, लेकिन बाद में जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो हमारे सामने है। आज हमने पढ़ लिया इमाम इब्ने जौज़ी के हालात ज़िंदगी, जो इसमें तकरीबन आप देखिए कि पेज नंबर 19 तक हमने पढ़ा। अब अगले चंद पेजेस में इनके उसातज़ा कराम के बारे में बात होगी। फिर हम इब्ने जौज़ी की टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि वो वक्त का कैसे इस्तेमाल करते थे। और फिर ये जो किताब हमारे सामने, इसका तज़िया अब इसका देखिए, पेज 28 से लेकर 141 पेज तक हम गुनाहों ही पे बात करेंगे। किसको डर लगता है गुनाहों से? हमें डर लगना चाहिए ना। कुरान पाक में आता है कि आमद के दिन इंसान सबसे ज़्यादा अपने आमाल नामे से डर रहे होगा। मुशफिकून मिम्मा फी, जो इंदराजात है ना, एंट्रीज हैं जो हमारे गुनाहों की, उससे डरेगा। तो कितना अच्छा मौका मिल रहा है कि हम पढ़ें तो सही, देखें तो सही कि गुनाह क्या है। हम इसमें गुनाहों के नताइज पढ़ेंगे, गुनाहों की जड़ की तीन चीज़ें, यानी क्या रूट में तीन चीज़ें होती हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे और आप ख़ुद देखेंगे कि अंदाज़ा होगा। फिर इसके बाद जो गुनाहों के असरात, फिर गुनाहों पर जो पिछली कौमों पर अजाब आए और वो उसमें तूफ़ान और जो मुख्तलिफ़ कौमों पे जो अजाब थे उसकी किस किस्में, फिर हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे गुनाहों की किस्में कौन सी हैं। अमूमन तो हम कहते हैं ना कबीरा गुनाह सगीरा गुनाह, लेकिन इसमें मज़ीद क्लासिफिकेशंस भी हैं। फिर गुनाहों की दूसरी किस्में, फिर आम लोगों की आदतें, फिर उलमाए दुनिया और उलमाए अहद, कौन सा आलिम दीन वाला है और कौन सा दुनिया के लिए काम कर रहा है, इसका फ़र्क देखेंगे। फिर मुत्तकीन की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उनसे कोई लग्जिशें होती हैं तो वो कैसी हैं, दिल का ज़िंदा होना और मुर्दा होना इससे क्या मुराद है। फिर अंदर बातिन की असलाह, यानी किरदार साजी कैसे हो, ख्वाहिशात नफ्स में जब बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, यानी हम अपने नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं तो उससे क्या नुकसान है। फिर एक टॉपिक इसमें आएगा ईमान और गुनाह पे, हालात की तब्दीली, गुनाह और नेक अमल का अंजाम और पै दर पे लफ्जिशें, यानी हम बार बार गुनाह करते हैं, फिर ये हम गुनाहों क्या क्या हथियार क्यों डाल देते हैं, कितनी दफ़ा सोचते हैं ये काम नहीं करना फिर कर देते हैं। फिर गुनाहों के अंजाम पे गौर व फिक्र, किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना, किस तरह और कब क्या मांगा जाए, दुआ मांगने का तरीका, और इसी तरह आप देखते जाएंगे कि इसमें काफ़ी चीज़ें करने के बाद हम तकरीबन 50 से ज़ायद असरात देखेंगे गुनाहों के, जो असल में किताब का नाम है कि गुनाहों के असरात। व्हाट, यानी जैसे आप कहते हैं ना बच्चे ने आइसक्रीम खा ली तो उसे गला ख़राब हो गया, ये हमारा एक गुमान है ना कि ठंडी चीज़ खाते हैं तो गला ख़राब होता है, तो हम 50+ असरात पढ़ेंगे जो हम खुद पे आ रहे हैं और हम कहते हैं हम नहीं पढ़ते इसको तो क्या होगा, तो फिर भुगतते रहे सारे अपने दुखों और तकलीफ़ों को। देखिए एक डॉक्टर आपके साथ काउंसलिंग करता है, आप अपनी तबीयत बताते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मेरे अंदर आग लगती है, मेरे सर में दर्द होता है, कमर में, फिर वो पूरे आपका टेस्ट करता है, फिर उसके बाद आपको बुलाता है, एक घंटे की मीटिंग होती है, आपके साथ आपका ट्रांसलेटर भी आता है। वो डॉक्टर उस वक्त क्या चाह रहा होता है कि आपको पहले समझाए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर आपको इलाज देगा। आप कहते मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, बड़ा मुश्किल लगता है, टाइम लगे, खाई मुझे पता लग जाएगा मेरे अंदर क्या, तो डॉक्टर कहेगा आप घर बैठिए, किसी दिन अचानक हार्ट अटैक होगा, आप दुनिया से चली जाएंगी। तो कितना बेहतर है कि आज जबकि मैं ज़िंदा हूँ मैं आज अपने अंदर की बीमारियाँ देख लूँ, और अगर नहीं है तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इखलास दे, तलब दे, तड़प दे, और अल्लाह के हुक्म से हम इस मौजू को उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। कोई बात जो आज बातें हुई इसमें से आप पूछ लीजिए, तो जज़ाकल्लाह खैर इस पर। जी आप इधर से फातिमा,
मैं अपनी जो تاثرات دینا چاہوں گی کہ انٹروڈکشن جو بھی کتاب کا کبھی ہوتا ہے نا خطبہ, تو ہم کبھی نہیں پڑھتے. یہ جب بھی کتاب کو شروع کرتے ہیں نا یہ تین چار سیدھے ہم چھوڑ دیتے ہیں, آگے جہاں سے کتاب اصل شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں بہت بورنگ لگتی ہے چیز. تو یہ مجھے آج پتہ لگا کہ کتنا ضروری ہے کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں.
بالکل, آپ دیکھیں نا, کھانا بھی خریدتے ہیں تو اس کے بھی انگریڈینٹس پڑھتے ہیں, تو کتاب کا شروع ہی نہیں پڑھا تو باقی کیسے ہوگا. تو اب آپ نے سنا کس کس کو شوق آ رہا ہے کہ میں یہ بک پڑھوں, ہینڈ ریز کرے. تو جو گھر ہے ان کو شوق کس نے اب دلانا ہے؟ آپ نے دلانا ہے, کیونکہ آج کا انٹروڈکشن انہوں نے مس کیا ہے. اگر کسی کو آپ نے سنوانا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ دے دی جائے گی, مکسلر کے شورل پہ آپ کو مل جائے گی. سن کے آئیں وہ لوگ بھی تاکہ اگلے ویک آئیں. بکس تھوڑی ہیں مجھے اندازہ ہے پہلے سے ہی, تو آپ لوگوں نے جنہوں نے لی ہیں آپ اس پہ اپنے نام لکھیں, ایک گھر کے لوگوں میں سے ایک ہی بندہ لے تاکہ اوروں کو بھی مل جائیں, اور جو کمپیوٹر سے پڑھ سکتے ہیں وہ بعد میں میرے سے لنک پوچھ سکتے ہیں, تو ہم اس کا انشاءاللہ پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, چلیے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب دیکھیں پورا 59 منٹ کا ہمارا یہ سیشن تھا, کیا لیس دین ون آور میں ہم نے کچھ سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا. تو وقت کی اس طرح قدر کی